एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे आज के समाज की नब्ज पर हाथ रखती है। एक ऐसी किताब जो उन गहरी होती चिंताओं और फासलों की बात करती है जिन्हें हम शायद रोज ही महसूस करते हैं अपने आसपास।
बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं सर पॉल कॉलर की बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण किताब द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का भविष्य पर।
हाँ,
ये किताब उस बेचैनी को, उस चिंता को समझने की कोशिश करती है जो आज दुनिया के कई समाजों में फैली हुई है और शायद उसका हल भी खोजने की।
और ये आज इतनी जरूरी क्यों लगती है? शायद इसलिए कि कॉलर उन दरारों की बात करते हैं जो हमें अब साफ दिखने लगी हैं। मतलब एक तरफ वो चमकते दमकते बड़े शहर हैं,
हाँ,
और दूसरी तरफ वो छोटे कस्बे या गांव जो जैसे पीछे छूटते जा रहे हैं। एक तरफ ऊंची तालीम वाले लोग और दूसरी तरफ वो जिन्हें लगता है कि उनके लिए मौके कम होते जा रहे हैं।
सही।
तो कॉलर का बड़ा दावा यही है कि पूंजीवाद, जिसने बेशक हमें बहुत कुछ दिया है, वो आज एक नैतिक और व्यवहारिक दोनों तरह के संकट से गुजर रहा है।
बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे समाज के, आप कह सकते हैं, ताने बाने का, हमारे आपसी रिश्तों का, नैतिक मूल्यों का संकट है। तो कॉलर यही बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? क्या इसे ऐसा बना सकते हैं कि ये सबके लिए काम करे, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं?
हाँ, तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कॉलर के नजरिए से।
किसी भी विचार को समझने के लिए उसके पीछे के इंसान को जानना भी दिलचस्प होता है। तो ये सर पॉल कॉलर हैं कौन?
हाँ बताइए जरा इनके बारे में।
जी, वे ब्रिटेन के एक बहुत ही जाने माने और सम्मानित विकास अर्थशास्त्री हैं और आजकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लावत्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं।
अच्छा, इनका अनुभव भी तो काफी बड़ा है सुना है।
हाँ बिल्कुल, वो वर्ल्ड बैंक में रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं और उनका जो काम है विकासशील देशों पर, खासकर अफ्रीका की गरीबी और अर्थव्यवस्था पर।
हाँ, द बॉटम बिलियन शायद।
हाँ बिल्कुल, उनकी किताब द बॉटम बिलियन ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है।
तो क्या चीज है जो उनके नजरिए को खास बनाती है?
मेरे ख्याल से जो बात कॉलर के नजरिए को खास बनाती है वो है उनका एक अनोखा मिश्रण। देखिए, एक तरफ तो वो आंकड़ों और आर्थिक विश्लेषण में माहिर हैं, दूसरी तरफ इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं और इन सब के साथ उनमें समाज की भलाई के लिए एक सच्ची मानवीय चिंता दिखती है। वो किसी एक विचारधारा के, मतलब, कट्टर समर्थक नहीं है।
अच्छा, मतलब प्रैग्मेटिस्ट है।
हाँ बिल्कुल, एक व्यवहारिक विचारक, एक प्रैग्मेटिस्ट हैं जो जमीनी हकीकत देखकर समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं।
और शायद उनका वो अनुभव भी काम आता होगा जो नाजुक संघर्ष कर रहे देशों के साथ काम करने का रहा है।
बिल्कुल सही, उस अनुभव ने उन्हें बहुत करीब से दिखाया है कि जब समाज का आपसी भरोसा, वो नैतिक ढांचा टूटता है तो क्या होता है। और अब वो उसी लेंस से, उसी नजरिए से अमीर विकसित देशों की समस्याओं को भी देख रहे हैं।
तो वो पूंजीवाद के दुश्मन नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसे डॉक्टर की तरह हैं जो मरीज की हालत देखकर चिंतित है और उसे ठीक करने का रास्ता बताना चाहता है।
तो फिर इस किताब द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म का मूल संदेश क्या है? क्या कहना चाहते हैं कॉलर?
देखिए, कॉलर का मूल तर्क ये है कि आज का जो पूंजीवाद है वो अपनी नैतिक बुनियाद से, उन मूल्यों से हिल गया है, भटक गया है जिन्होंने कभी इसे समाज के लिए फायदेमंद बनाया था।
अच्छा,
और इसी भटकाव ने, वो कहते हैं, पश्चिमी समाजों में गहरी खाइयां खोद दी हैं, नुकसान पहुंचाने वाले विभाजन पैदा कर दिए हैं।
और उनका मानना है कि पूंजीवाद जैसे दो गलत रास्तों पर चल पड़ा है।
हाँ बिल्कुल, एक तरफ है वो सोच जो बाजार को ही सब कुछ मानती है, मार्केट फंडामेंटलिज्म, जो सिर्फ निजी फायदे और मुनाफे को देखती है, और दूसरी तरफ है एक तरह का सोशल डेमोक्रेसी का मॉडल जो सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों और खास समूहों की बात करते करते आपसी जिम्मेदारियों और समुदाय की भावना को जैसे भूल सा गया है।
तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच कॉलर क्या सुझाते हैं?
यहीं पर कॉलर एक तीसरा रास्ता सुझाते हैं। वो इन दोनों चरमपंथी सोच से, चाहे वो गुस्से वाला लोक लुभावन राष्ट्रवाद हो या फिर बड़े शहरों के पढ़े लिखे अभिजात्य वर्ग का खुद को दूसरों से बेहतर समझना हो, इन सब से हटकर एक व्यवहारिक नैतिकता पर आधारित पूंजीवाद की वकालत करते हैं। ये किताब असल में उन आम लोगों के लिए है जो महसूस तो करते हैं कि समाज में कुछ गड़बड़ है, पर उन्हें इन भड़काऊ नारों या चरमपंथी समाधानों में कोई जवाब नहीं दिखता।
तो ये किताब एक तरह की यात्रा पर ले जाती है, पहले समस्या की जड़ तक।
हाँ, पहले कॉलर आज की समस्याओं, नई चिंताओं का विश्लेषण करते हैं, जैसे शहर और गांव का फासला या शिक्षा के आधार पर बनता नया वर्ग भेद।
फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
हाँ, फिर वो उस दौर 1945 से 1970 को देखते हैं जिसे वो पूंजीवाद का स्वर्ण युग कहते हैं, जब समाज में आपसी जिम्मेदारी की भावना मजबूत थी। और आखिर में वो बताते हैं कि उस नैतिक कंपस को, उस सही दिशा बताने वाले यंत्र को आज के समय में फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है।
चलिए अब किताब के हिस्सों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहला भाग है संकट यानी द क्राइसिस। यहाँ कॉलर क्या कहते हैं?
हाँ, तो इस पहले भाग में कॉलर आज के संकट का विश्लेषण करते हैं। वो मुख्य रूप से दो बड़े विभाजनों की पहचान करते हैं जो समाज को तोड़ रहे हैं।
पहला कौन सा है?
पहला है भौगोलिक विभाजन। मतलब एक तरफ है बड़े फलते फूलते महानगर जो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हैं, जहां तरक्की है, और दूसरी तरफ है छोटे शहर, प्रांतीय इलाके, कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र जो पिछड़ते जा रहे हैं,
जहां लोगों को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है।
बिल्कुल, उन्हें लगता है उनकी कोई पूछ नहीं, उनका सम्मान नहीं। और दूसरा विभाजन
वो शिक्षा वाला।
हाँ, दूसरा है शिक्षा पर आधारित वर्ग विभाजन। एक नया वर्ग उभर रहा है, बहुत पढ़े लिखे ऊंची डिग्रियों वाले लोग, जिन्हें कॉलर कॉग्निटिव इलीट कहते हैं। ये वर्ग बाकी समाज से, खासकर कम पढ़े लिखे या पारंपरिक काम करने वालों से, काफी अलग थलग सा हो गया है।
और कॉलर ये जोर देकर कहते हैं कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सम्मान और अपनेपन की भावना खोने का भी है, बिलोंगिंग का। लोगों को लग रहा है कि उनकी कद्र नहीं रही, उनका समाज में वो स्थान नहीं रहा जो पहले था।
ये तो हुई आज की तस्वीर, लेकिन फिर कॉलर उस स्वर्ण युग की बात करते हैं, 1945 से 1970 का समय। उसे वो स्वर्ण युग क्यों कहते हैं?
हाँ, वो उसे पूंजीवाद का स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि तब समाज आपसी दायित्वों यानी रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस के एक मजबूत अलिखित सामाजिक अनुबंध पर टिका था।
मतलब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां।
बिल्कुल, उस समय परिवार, कंपनियां, सोचिए पुरानी कैडबरी जैसी कंपनियों के बारे में जिनका जिक्र वो करते हैं, जो अपने कर्मचारियों और शहर का ख्याल रखती थी, और समाज के दूसरे समूह, क्लब वगैरह, आपसी कर्तव्यों के घने जाल से बंधे थे। और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान भी थी जो लोगों को देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने को प्रेरित करती थी। एक हम की भावना थी।
तो फिर ये अच्छी व्यवस्था, ये संतुलन बिगड़ा कैसे? कॉलर इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं?
कॉलर इसके लिए मुख्य रूप से दो विचारधाराओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों विचारधाराएं सुनने में एक दूसरे की विरोधी लगती हैं, पर कॉलर के अनुसार दोनों ने मिलकर समाज के नैतिक ताने बाने को कमजोर किया।
अच्छा, कौन सी दो?
पहली, अर्थशास्त्र की दुनिया से, खासकर मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों से प्रेरित होकर, इसने आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मैन का विचार फैलाया कि इंसान मूल रूप से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है। और इसी सोच से निकला शेयर होल्डर प्राइमेसी का सिद्धांत, कि कंपनियों का एकमात्र काम है अपने शेयर धारकों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना,
जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों ने बाकी चीजों से मुंह मोड़ लिया।
हाँ, धीरे धीरे कंपनियों ने अपने कर्मचारियों, अपने ग्राहकों, अपने समाज, अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी महसूस करना कम कर दिया। उनका फोकस सिर्फ बॉटम लाइन पर आ गया।
ये तो हुई एक तरफ की बात, दूसरी तरफ से कौन सी विचारधारा आई?
दूसरी तरफ से आई दर्शन और कानून की दुनिया से प्रभावित सोच, जो जॉन रॉल्स जैसे उदारवादी दार्शनिकों से प्रेरित थी। इसने व्यक्तिगत अधिकारों, इंडिविजुअल राइट्स पर इतना ज्यादा जोर दिया
कि आपसी जिम्मेदारियों की बात पीछे छूट गई।
बिल्कुल, इससे एक ऐसी पितृसत्तात्मक, मतलब ऊपर से नीचे चलने वाली, कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बनी, जिसे अक्सर पढ़े लिखे अभिजात वर्ग ने ही चलाया। और इसमें कॉलर के अनुसार पारंपरिक मजदूर वर्ग या आम आदमी कई बार खुद को कटा हुआ, अलग थलग महसूस करने लगा।
तो विडंबना ये है कि एक तरफ सिर्फ मुनाफे की बात, दूसरी तरफ सिर्फ अधिकारों की बात, और दोनों ने मिलकर समाज की उस हम वाली भावना को, उस आपसी जुड़ाव को कमजोर कर दिया।
सही, मैं और मेरे अधिकार हावी हो गए, और हम और हमारे कर्तव्य पीछे छूट गए। आपसी जिम्मेदारियों का वो जाल कमजोर पड़ गया।
ये तो हुआ संकट का निदान, समस्या की पहचान। अब आते हैं समाधान पर। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा है नैतिकता का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग दी एथिक्स। यहाँ कॉलर क्या कहते हैं?
हाँ, कॉलर मानते हैं कि इस समाधान के लिए हमें अपनी नैतिकता की जड़ों को फिर से सींचना होगा। सिर्फ नियम बदलने से काम नहीं चलेगा, सोच बदलनी होगी। और इसमें वो कई स्तरों पर बात करते हैं।
सबसे पहले शायद राज्य की भूमिका।
हाँ, सबसे पहले बात आती है नैतिक राज्य की, और यहाँ कॉलर देशभक्ति पैट्रियोटिज्म और राष्ट्रवाद नेशनलिज्म में एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं।
ये फर्क समझना जरूरी है।
बिल्कुल, देशभक्ति है अपने देश, अपनी मिट्टी, अपने लोगों से प्यार और जुड़ाव की एक सकारात्मक भावना, जबकि राष्ट्रवाद, वो कहते हैं, अक्सर दूसरों के प्रति नफरत, आक्रामकता और श्रेष्ठता की भावना में बदल जाता है। कॉलर तर्क देते हैं कि एक नैतिक राज्य को इस सकारात्मक जोड़ने वाली देशभक्ति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यही वो गोंद है, वो साझा पहचान है जो समाज को जोड़ती है, आपसी भरोसे को बनाती है, और इसी भरोसे पर एक उदार कल्याणकारी व्यवस्था टिक सकती है।
राज्य के बाद फिर बात आती है कंपनियों की, फर्म्स की।
हाँ, अगला कदम है नैतिक फर्म। कॉलर का साफ तर्क है कि कंपनियों का सिर्फ शेयर होल्डर के मुनाफे के पीछे भागना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि लंबे समय में खुद कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से भी अदक्ष है।
क्यों?
क्योंकि एक नैतिक कंपनी समझती है कि वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संगठन है। उसके अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, सप्लायर्स और जिस समाज में वो काम करती है, उन सब के प्रति कई जिम्मेदारियां हैं।
तो वो क्या करने की सलाह देते हैं?
वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार की बात करते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे स्टेक होल्डर्स की आवाज भी सुनी जाए, और वो किराया मांग, मतलब बिना कोई असली वैल्यू पैदा किए सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर पैसा कमाने जैसी गतिविधियों पर सख्ती और टैक्स लगाने का सुझाव देते हैं।
और ये नैतिकता सिर्फ राज्य और कंपनी तक ही सीमित नहीं है शायद?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलर नैतिक परिवार के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि परिवार ही वो सबसे बुनियादी संस्था है, वो पहली पाठशाला है जहाँ बच्चे भरोसा करना सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, जिम्मेदारियां निभाना सीखते हैं। वो पारिवारिक विखराओं के सामाजिक परिणामों पर, खासकर बच्चों पर इसके असर को लेकर काफी चिंता जताते हैं, और उनका मानना है कि एक स्वस्थ नैतिक समाज को परिवार को सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल की नींव के रूप में पहचानना चाहिए और उसे मजबूत करने वाली नीतियों का समर्थन करना चाहिए।
और फिर इस नैतिक दायरे को देश की सीमाओं से बाहर भी ले जाते हैं कॉलर।
हाँ, आखिर में वो बात करते हैं नैतिक दुनिया, एथिकल वर्ल्ड की, मतलब आपसी दायित्व के सिद्धांत को राष्ट्रीय सीमाओं से परे ले जाना। कॉलर का तर्क है कि अमीर समृद्ध राष्ट्रों का दुनिया के सबसे गरीब और अस्थिर देशों में रहने वाले लोगों के प्रति, खासकर जिन्हें वो निचले एक अरब, बॉटम बिलियन कहते हैं, उनके प्रति एक नैतिक कर्तव्य है।
और ये कर्तव्य सिर्फ दान देने से पूरा नहीं होता?
नहीं, वो कहते हैं ये यथार्थवादी प्रभावी सहायता, निष्पक्ष व्यापार नीतियों और सुरक्षा में सहयोग के जरिए होना चाहिए। ये एक तरह की वैश्विक पारस्परिक जिम्मेदारी है।
वो हमें संपूर्ण देखा नैतिकता के पुनर्निर्माण के अलग अलग स्तर समझे, राज्य, फर्म, परिवार, दुनिया। अब किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा है समावेशी राजनीति की बहाली, रिस्टोरिंग इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। यहाँ कॉलर्स इन नैतिक विचारों को जमीनी हकीकत में कैसे बदलते हैं?
बिल्कुल, यहाँ कॉलर अपने नैतिक ढांचे को एक व्यवहारिक राजनीतिक एजेंडे में बदलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ बातें करने से या नैतिक उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस नीतियां और कदम उठाने होंगे।
जैसे कि वो जो भौगोलिक विभाजन की बात थी, उसे कम करने के लिए क्या सुझाव है?
हाँ, उस भौगोलिक विभाजन को पाटने के लिए वो एक काफी रेडिकल सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि बड़े सफल शहरों में जमीन की बढ़ती कीमतों या प्रॉपर्टी से होने वाली बिना मेहनत की कमाई, जिसे अनऑर्न्ड इकोनॉमिक रेंट्स कहते हैं, फास्ट टैक्स लगाए जाए।
अच्छा, और उस पैसे का क्या हो?
उस राजस्व को फिर पिछड़ते शहरों, कस्बों और इलाकों में पुनर्निर्देशित किया जाए, वहाँ निवेश किया जाए, ताकि वहाँ भी विकास हो सके, रोजगार पैदा हो सके।
ये तो काफी बड़ा कदम होगा। और वो जो दूसरा विभाजन था, शिक्षा वाला, यानी वर्ग विभाजन, उसे पाटने के लिए?
उसके लिए कॉलर सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्रियों पर जोर देने की मौजूदा प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा महत्व देना होगा,
ताकि जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है उन्हें भी अच्छे मौके मिले।
बिल्कुल, ताकि हुनर की कद्र हो सिर्फ डिग्री की नहीं, ताकि युवाओं को सम्मानजनक और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां मिल सकें, भले ही वो अकादमिक रास्ते पर न गए हों।
और राजनीतिक स्तर पर वो क्या चाहते हैं?
राजनीतिक रूप से कॉलर एक नए व्यावहारिक केंद्र, प्रैग्मैटिक सेंटर का आह्वान करते हैं। एक ऐसी राजनीति जो ना तो दक्षिणपंथी लोग लुभावन राष्ट्रवाद के बहकावे में आए, न ही वामपंथी पहचान की राजनीति या अभिजात्य उदारवाद में खो जाए, बल्कि एक ऐसी राजनीति जो समुदाय, सकारात्मक देशभक्ति और सबसे जरूरी पारस्परिक दायित्व, कि मूल्यों पर आधारित हो, एक ऐसी राजनीति जो समाज के टूटे हुए धागों को फिर से जोड़ने का काम करे।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज क्या निकल कर आते हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी सीख यही है कि चरम विचारधाराओं की नाकामी हुई है।
हाँ बिल्कुल, चाहे वो बाजार को ही सब कुछ मान लेना हो, लेसे फेयर कैपिटलिज्म, या फिर राज्य को ही सब कुछ कंट्रोल करने देना हो, दोनों ही अकेले समाज की समस्याओं को हल करने में नाकाम रहे हैं। कॉलर का बड़ा दावा यही है कि हमारी आर्थिक समस्याएं असल में नैतिक और सामाजिक हैं।
और इसका समाधान फिर किस में है?
समाधान कॉलर के अनुसार पारस्परिक दायित्व, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन, यानी आपसी जिम्मेदारी की भावना को फिर से जगाने में है। एक स्वस्थ समाज सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता, वो कर्तव्यों की भी बात करता है। ये एक दो तरफा रास्ता है।
मुझे लगता है अपनेपन और साझा पहचान, बिलोंगिंग एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। इंसान सामाजिक प्राणी है, हमें कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करने की जरूरत होती है, और कॉलर एक सकारात्मक जोड़ने वाली देशभक्ति की बात करते हैं जो हमें हम होने का एहसास दिलाए।
हाँ, वो राष्ट्रवाद वाली नफरत नहीं बल्कि अपनेपन वाली देशभक्ति। और चौथा, वो नए विभाजन जिन पर कॉलर का खास ध्यान है, जगह, प्लेस और शिक्षा, एजुकेशन का विभाजन।
ये बात वाकई बहुत सोचने वाली है। आज शायद सबसे बड़ी खाई अमीर और गरीब के बीच उतनी नहीं है जितनी बड़े शहर और छोटे कस्बे के बीच है, या ज्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच है। भारत जैसे देश में भी हम शायद इन तनावों को महसूस करते हैं, है ना?
बिल्कुल, शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच या अलग अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एक दूरी सी महसूस होती है। लोगों को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनका सम्मान कम हो गया है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, इज्जत की बात है।
और आखिरी बात, व्यवहारिकता पर जोर। कॉलर कोई पुरानी दुनिया में लौटने की बात नहीं कर रहे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे समाधान चाहते हैं जो आज की दुनिया में काम करें, जो जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हों, जो बाजार की गतिशीलता को सामाजिक एकजुटता और नैतिक जिम्मेदारियों के साथ जोड़ सकें। वो भविष्य के लिए एक व्यवहारिक रास्ता बनाने की बात करते हैं।
इस किताब में वाकई कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर हम कुछ मूल विचारों को याद करें जिन्हें शायद हम कोट की तरह समझ सकते हैं।
हाँ, जैसे पहला विचार ये हो सकता है, आज की जो बेचैनी है वो सिर्फ भौतिक लालच या पैसे की कमी के बारे में नहीं है, बल्कि ये गरिमा और अपनेपन के गहरे नुकसान के बारे में है। पूंजीवाद ने माल तो दिया है, लेकिन शायद सम्मान देना बंद कर दिया है।
ये बहुत गहरी बात है। मतलब समस्या सिर्फ आय असमानता की नहीं बल्कि पहचान और उद्देश्य के संकट की भी है।
बिल्कुल। दूसरा अहम विचार देशभक्ति को लेकर है। हमें सच्ची देशभक्ति को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, जो हमारे देश के प्रति साझा प्रेम है, और इसे राष्ट्रवाद से साफ तौर पर अलग करना है, जो दूसरों के प्रति जुझारू शत्रुता है। देशभक्ति उस हम की नींव है जो एक सहकारी समाज को मुमकिन बनाता है।
ये साझा पहचान के सकारात्मक पहलू पर जोर है, न कि बांटने वाले पहलू पर।
हाँ।
तीसरा विचार कंपनियों की भूमिका पर हो सकता है।
आधुनिक फर्म जो सिर्फ शेयरधारक मूल्य के प्रति जवाबदेह है, वो अपने असली मकसद और अपने दायित्वों से वंचित हो गई है। हमें नैतिक फर्म का पुनर्निर्माण करना चाहिए, जो समझती है कि वो एक समुदाय है जिसके अपने कर्मचारियों, अपने इलाके और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं।
ये कॉर्पोरेट जगत को एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो शायद वो भूल गए हैं।
सही। और चौथा, जो शायद पूरी किताब का सार है, आगे का काम बाजार और राज्य की विचारधाराओं के बीच चुनना नहीं है, बल्कि उस सामाजिक ताने बाने का पुनर्निर्माण करना है जिसकी दोनों ने उपेक्षा की है। भविष्य एक व्यवहारिक केंद्र में निहित है जो पारस्परिक जिम्मेदारी की नैतिकता पर आधारित है।
ये अतिवाद को खारिज करके मध्य मार्ग और आपसी जिम्मेदारी पर बल देता है,
संतुलन की बात करता है।
बिल्कुल।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तार्किक भी, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि इन विचारों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? एक आम इंसान क्या कर सकता है?
हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। शायद शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर खुद से हो सकती है। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचें, अपने परिवार के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने काम की जगह पर।
मतलब अपने लोकल कम्युनिटी में ज्यादा एक्टिव होना। हाँ, क्या हम अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़े और मददगार हो सकते हैं? क्या हम अपने मोहल्ले या कॉलोनी की बेहतरी में छोटा सा भी योगदान दे सकते हैं? ये सब आपसी जिम्मेदारी की शुरुआत है।
और जो लोग व्यापार जगत में हैं या कंपनियों में बड़े पदों पर हैं, उनके लिए क्या संदेश है?
उनके लिए ये एक सीधी चुनौती है कि वो सिर्फ तिमाही नतीजों और मुनाफे से आगे बढ़कर सोचें। क्या वो अपने कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट में निवेश कर रहे हैं? क्या वो उस समुदाय का समर्थन कर रहे हैं जहां उनका ऑफिस या फैक्ट्री है? क्या वो ईमानदारी से टैक्स चुका रहे हैं? ये सब नैतिक फर्म बनाने की दिशा में कदम है।
और नीति निर्माताओं के लिए, सरकारों के लिए,
उनके लिए कॉलर कई ठोस सुझाव देते हैं, जैसे पिछड़ते इलाकों को पुनर्जीवित करने के लिए खास लक्षित नीतियां बनाना, या फिर शिक्षा प्रणाली में ऐसा बदलाव लाना कि अकादमिक डिग्री के बिना भी लोगों को सम्मानजनक और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां मिल सकें, वोकेशनल ट्रेनिंग को इज्जत देना।
हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई बड़ी कंपनी सिर्फ बड़े शहर में मुख्यालय रखने के बजाय किसी छोटे पिछड़ते शहर में निवेश करती है, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करती है, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।
बिल्कुल, या सरकारी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ITI या पॉलिटेक्निक को उतना ही महत्व दें जितना यूनिवर्सिटी डिग्री को देती हैं। ये कॉलर के विचारों के व्यावहारिक अनुप्रयोग हो सकते हैं।
तो अगर आपको इस किताब से एक सबसे बड़ी सीख बतानी हो तो वो क्या होगी?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये समझना है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था की समस्याएं असल में नैतिक और सामाजिक हैं, उनकी जड़ें गहरी हैं। सिर्फ नियमों में फेरबदल करने से या सिर्फ आर्थिक उपायों से शायद बात नहीं बनेगी। जब तक हम एक समाज के तौर पर अपनी सोच, अपने मूल्यों और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों पर दोबारा विचार नहीं करते, एक गहरे नैतिक नवीनीकरण की जरूरत है।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है पारस्परिक दायित्व और एक सकारात्मक समावेशी देशभक्ति पर उनका जोर। ये हमारी आजकल की राजनीतिक बहस को, जो अक्सर से वामपंथ और दक्षिणपंथ के घिसे पटे विकल्पों में फंसकर रह जाती है, एक नई, ज्यादा कंस्ट्रक्टिव दिशा दे सकता है। ये दिखाता है कि बाजार समुदाय और राष्ट्र के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ सह अस्तित्व में रह सकता है, बल्कि रहना चाहिए।
बिल्कुल, कुल मिलाकर द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म हमारी मौजूदा मुश्किलों का एक बहुत ही मानवीय और जरूरी विश्लेषण है, और ये सिर्फ विश्लेषण नहीं, ये विभाजन को पाटने के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका भी है। ये कठोर आर्थिक विश्लेषण को नैतिक दर्शन के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ती है।
तो जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अपने अनुभव में क्या आपको भी समाज में वो विभाजन महसूस होते हैं जिनकी बात कॉलर करते हैं, चाहे वो जगह का हो, शिक्षा का हो या सम्मान का? और अगर हाँ, तो ये आपसी जिम्मेदारी का विचार इस खाई को पाटने में कैसे मदद कर सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।